आज के सबक को शुरू करते वक्त मुझे एक अजीब तरह की खुशी थी। आप पूछेंगे क्या? तो खुशी ये थी कि 2-3 दिन से हमारे साथ एक बहन है ना, तो अब ना मुझे ऐसे लग रहा है कि अल्लाह ताला आपके साथ कोई बहुत ही बेहतरी चाहता है। कल रात को भी मैंने जब देखा इस सबक को तो मेरे दिल में ये बात थी, मैंने किसी से शेयर की कि हमारी इस बहन का इस वक्त इस तरफ आना, और साथ ही साथ वो आयतें आ रही हैं जो बिल्कुल इनके ज़हनी तरतीब के मुताबिक है। पहले दिन आप आए तो अल्लाह ताला की बातें हुई, अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसे, तौहीद की बातें हुई, साथ ही कायनात पे गौर व फिक्र, इन्ना फी खल्क़ि समावात की बात हुई। फिर उसके बाद मोहब्बत की बात हुई कि सबसे ज़्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह से होती है, और जितनी मोहब्बत अल्लाह ताला से बढ़ती जाएगी उतना उसकी बातों पर अमल करना आसान होगा। फिर उसके बाद हमने हलाल और हराम देख लिया, क्या खाओ क्या ना खाओ, मोस्टली यही सवाल होता है ना कि अब क्या करें क्या ना करें। और आज पूरे इस्लाम का खुलासा, मैं आज सोच रही थी कि आज का सबक सुनने के बाद इनका इस्लाम पूरा हो जाएगा, और मुझे वो आजकल बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग राह चलते आते थे, अल्लाह के नबी इस्लाम की बात बताएं क्या है, आप उनको बताते, बात चूँकि सीधी सादी होती थी, दिल को लगती थी, फितरत की थी, वही मुसलमान होके घर जाते, कुंबे बिरादरी को जमा करते, कहते भाई मैं आया हूँ, मुझे तो बड़ी अच्छी बातें लगी हैं, ये तो सारी फितरत की हैं। बाद दफ़ा पूरा पूरा ख़ानदान मुसलमान हो जाता था। हम कहते हैं इस्लाम पता नहीं कितना मुश्किल है, बाकी चीज़ें सारी इसके अंदर आती हैं जो बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है? तो आज का जो सबक है इसको ख़ास तौर पे आप सबने भी इसी जहन से सुनना है कि आप इस्लाम के अंदर बिल्कुल नए हैं, किसी को भी नहीं पता कि इस्लाम क्या है, लोग पूछते हैं ना, और जितना आज अल्लाह माफ़ करे हम मुसलमानों ने और दीन के नाम पे मुख्तलिफ वर्जन पेश करने वालों ने इस्लाम को मुश्किल कर दिया कि हमारी आपस की लड़ाइयों और झगड़ों की वजह से गैरों को ये लगने लगा कि इस्लाम शायद मरने मारने का हुक्म देता है। तो इंशाल्लाह ताला हमारा आज का जो सबक है ये पूरे का पूरा आपको इस्लाम की एक मुकम्मल और जामे तस्वीर दिखाएगा। इसलिए चाहूँगी कि आयतों को शुरू करने से पहले आपको खुलासा दे दूँ कि आज के सबक में हम सब क्या देखने वाले हैं, किस तरह से ये इस्लाम शुरू होता है और कैसे होता है। और अगर टेक्स्ट के एतबार से देखें तो हमारी आज की जो आयात हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किबले की तब्दीली के मौके पे जो रिस्पांस हुआ था उसी से मुतल्लिक है। दूसरे पारे के बिल्कुल शुरू से हम लोग ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों ने शोर मचा दिया, पहले किबला इधर था, उधर क्यों हुआ, ये सारी बातें आप सबको समझ आती हैं। तो अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं लैसल बिर्रा, नेकी सिर्फ ये नहीं है, या नोट कीजिएगा आप लिखिए, क्योंकि सिर्फ ये नहीं लगाएंगे ना तो मानी बदल जाएगा, क्योंकि अरबी जुबान में एक लफ्ज़ होता है ला और एक होता है लैसा। ला का मानी है नो ओनली, यानी सिर्फ कहते नो यू डोंट डू दिस, लेकिन लैसा में शिद्दत है, सिर्फ यही नहीं है, यानी तुमने जो दीन के नाम पे इतने झगड़े शुरू कर दिए, मशरिक की तरफ मुंह करो, मगरिब की तरफ मुंह करो, किसकी तरफ करो, तो याद रखो कि नेकी सिर्फ यही नहीं है कि नमाज पढ़ते हुए तुम्हारा मुंह मशरिक की तरफ होता है कि मगरिब की तरफ होता है, तो फिर अगली बात क्या है, फिर नेकी है क्या? सवाल पैदा होता है ना कि नेकी ये नहीं है, लैसल बिर्रा ये नेकी नहीं है, अंतवल्लु वजूहकुम कि तुम फेरो अपने चेहरों को क़िबल अल मशरिकी, मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ, यहाँ पे निगेट किया गया, रद्द कर दिया कि नेकी सिर्फ बहसों में पड़ने का और एक लाइन खींच कर उसके ऊपर चलने का नाम नहीं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि नेकी क्या है, तो कहा वलाकिन अल बिर्रा, बल्कि असल नेकी तो उसकी है। अब यहाँ से 1, 2, 3 करके स्टेप्स लिखेंगे आप, किसी को नेक बनना है, किसी को मुसलमान बनना है, किसी को अल्लाह का प्यारा बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, नंबर 1, 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं, नंबर 1 जिसको रूट कहेंगे, मन आमना बिल्लाह, पहले अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की पहचान, अल्लाह कौन है, कैसा है, मेरा उससे ताल्लुक कैसे होगा, अल्लाह की बात पे ईमान। जब मन आमना बिल्लाह हुआ तो अल्लाह पर भी ईमान तो अल्लाह की बात पर भी ईमान, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह की मोहब्बत, हुब्बे रब्बी, अल्लाह से प्यार, फिर वल यौमिल आखिर, नंबर 2 लिख लीजिए। मैं खुलासा करा रही हूँ, हालांकि इस आयत में से बहुत कुछ हम अभी समेटेंगे दोबारा, लेकिन सिर्फ अपने जहन को साथ चलाइए, इस आयत के साथ साथ रहिए, इधर उधर ना घूमें कि आपकी सोच भटक जाए। ठीक है, पहली चीज अल्लाह की मार्फत, सबसे पहले दिल को अल्लाह की मार्फत हो, फिर वल यौमिल आखिर, क्यामत के दिन पर ईमान। और वो ईमान क्या है? नंबर एक, हम सबको मौत आनी है, इस पे तो सब ईमान लाते हैं, मोमिन काफिर फासिक फाजिर, ना ईमान लाने की गुंजाइश ही नहीं, रोज हजारों लोग मर रहे हैं। लेकिन यौमुल आखिर का दूसरा स्टेप क्या है कि मरने के बाद इंसान जब कब्र में डाला जाता है कुछ खास रिचुअल्स करने के बाद, तो उसको उसके आमाल की बुनियाद पे उसका जन्नती होना या जहन्नमी होना दिखाया जाता है। और एक खास वक्त वो बंदा अपनी कब्र में गुजारता है जिसमें उसका जिस्म कब्र में रहता है लेकिन उसकी रूह, सोल, स्पिरिट अल्लाह के पास चली जाती है। रूह के रहने की दो जगह हैं, या जन्नत या जहन्नम, स्वर्ग या नर्क जिसको लोग बोलते हैं। अगर दुनिया में अच्छे काम करता था तो उसकी रूह को जन्नत की तरफ ले जाया जाता है, उसके साथ अच्छा मामला होता है, और अगर बुरे काम करता था तो जहन्नम, जो जमीन के नीचे है, गहरी खाई, उसमें डाल दिया जाता है। उसको जन्नत और जहन्नम दिखाई जाती है, फिर वापस उसकी रूह को उसके जिस्म में डाला जाता है कब्र में। वहां मुनकर और नकीर आते हैं, उसका हिसाब लेते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको जिंदा किया जाता है। अगर नेक था तो उसको कब्र में पता चल जाता है कि मैं नेक हूं, जैसे अभी आपने टेस्ट दिए ना, सबको पता कैसा हुआ, कोई थोड़ी बहुत गलती हुई होगी, नहीं लगी पता, वो पता लग जाएगी नंबर से के। लेकिन अमूमन सबको टेस्ट देते खुद ही अपना रिजल्ट पता होता है। इसी तरह मरते ही एक इंसान को अपना हिसाब किताब पता होता है, लेकिन उसकी रूह के साथ वो मामला करके दिखा दिया जाता है। नेक है तो उसकी रूह जब आसमान पे ले जाई जाती है तो सातों दरवाजे गुजार के वो आगे अल्लाह ताला के अर्श के आगे झुक जाती है, उसको जन्नत में सैर करा दी जाती है, छोटा सा एक टूर दे दिया, फिर वापस बुला लिया, फिर उसकी रूह को जिस्म में डाल दिया, उतनी देर में उसका कफन दफन नमाज़े जनाजा हो चुकी होती है। फिर वहां उसको कब्र में तीन सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप नोट करें ना, तो मैं सिर्फ अल यौमिल आखिर पे आपको मुस्लिम क्रीड अबाउट हेयर आफ्टर का खुलासा दे रही हूँ इस वक्त। अगर आप छोटे छोटे जुमलों में, ये छोटी बच्चियां भी लिख सकती हैं, कोई आपसे पूछ सकता है कि मुसलमान का आखिरत के बारे में क्या अकीदा है, तो वो यही है जो मैं आपको चंद लफ्ज़ों में बता रही हूँ। इस पे पूरी किताबों की किताबें बाद में आप पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जन्नत में या जहन्नम में जाने वाले कब्र में जब आते हैं, उनकी कब्र में उनका हिसाब होता है। तीन सवाल कब्र में पूछे जाते हैं मैयत से। पहला सवाल, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन था? फर्स्ट एंड एवर फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज योर लॉर्ड, अल्लाह कौन था, रब कौन? आप अगर दुनिया में बता था रब कौन है तो ही जवाब देगा ना, और रब की बात मानी थी तो है। और अगर किसी ने भगवान के नाम पे पत्थर को पूजा, भगवान के नाम पे पीपल के पत्ते को पूजा, तो कितने करोड़ 33 करोड़ खुदाओं के नाम थोड़ी याद रहेगा। तो रब एक है, रब उसको याद रहेगा जिसने दुनिया में कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, अल्लाह के बारे में उसकी सवालत। सेकंड क्वेश्चन, मर रसूलू का, तेरा रसूल कौन था? इस पे आज बात होगी इंशाल्लाह सबक में, रसूल की हकीकत कौन था, उसने क्या कहा, उसकी जिंदगी कैसी थी। ना तो कब्र में सवाल किसी पीर के बारे में होना है, ना बुजुर्ग, ना इमाम, ना उस्ताद, ना स्कूल, ना मदरसा, ना किस फिक्र से ताल्लुक रखते थे, किस ग्रोह से ताल्लुक थे। एक सवाल है कि तुम्हारा इमाम कौन था, और हमारा इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरा और आखिरी सवाल कब्र में, मा दीनु का, तेरा दीन क्या था? अगर इस्लाम था तो कहेगा दीन अल इस्लाम, और अगर इस्लाम की जगह चूं चूं का मुरब्बा था, सारी दुनिया की चीजें जोड़ के एक अपनी मर्जी का मजहब बनाया हुआ था, तो वहां लफ्ज इस्लाम या अल्लाह या रसूल नहीं आएगा। जब ये तीन सवालों के जवाब मरने वाला दे देता है, तो हदीस में आता है कि फिर आवाज आती है आसमान से कि ये बंदा कामयाब हो गया, अब इसको सोने दो, ये बहुत काम करके आया है। आज की आयत आप पढ़ेंगे, दीन इस्लाम सिर्फ लिप सर्विस का नाम नहीं है, कुछ करने का नाम है। जैसे कोई काम शुरू करें तो फिर काम करना पड़ता है, अल्लाह ताला फिर उस मैयत को सुला देते हैं, नम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, क्योंकि ये मेहनतें करके आया है, ये अल्लाह के दीन के लिए, अपनी जात पे अल्लाह को राजी करने के लिए, दुनिया में बंदों को आग से बचाने के लिए दिन रात मेहनतें करता था, अब इसको सोने दो। और उसको कहा जाता है कि अब इंतजार कर कयामत का, जब तुझे असल वो जन्नत मिलेगी जो आसमानों पे जो तुझे दिखाई है। और उस वक्त उस मैयत की ख्वाहिश होती है कि जल्दी से कयामत आए और वो खूबसूरत जन्नत आसमानों पे देख आया हूँ, मैं उसमें जाऊँ। हाँ, उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, लज्जत, रोहम व रेहान, और क्या कुछ कुरान में आप पढ़ते हैं सूरत वाकया, और उसमें तो ये तो है नेक का अंजाम। फिर उसकी रूह खैर में होती है। इसके बरक्स जिस बंदे की जिंदगी में इस्लाम नहीं, दीन नहीं, रब नहीं, और रब है भी तो मन चाह रब, पत्थर का खुदा रब है, ये पानी की बोतल रब है, तो क्या करेगा वो? उसको उस वक्त लफ्ज अल्लाह कहने नहीं, नहीं आएगा उसको, रसूल का नाम नहीं आएगा उसको, इस्लाम का नाम नहीं आएगा, लिहाजा फिर उसके साथ भी ऑपोजिट मामला होगा, उसकी रूह को कब्र में से जहन्नुम में डाल दिया जाता है, और कब्र में जहन्नुम का एक अजाब शुरू हो जाता है, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हु। और उसकी ख्वाहिश होती है कि कभी क्यामत ना आए, क्योंकि उसको आगे वो बहुत बुरा अजाब दिख रहा है। इसके बाद फिर क्या होगा? सबकी रूहें अपने अपनी जगहों पे पहुंच गई। फिर एक दिन इस इंसानियत की मौत आएगी, एक बहुत बड़ा धमाका होगा जिसको क्यामत कहते हैं। ये दुनिया अल्लाह ने एक मकसद से बनाई, जब वो मकसद पूरा हो गया, सब लोग इस दुनिया में से अपने हिसाब से चले गए, अब कयामत के बाद सारी इंसानियत अपनी कब्रों से उठाई जाएगी। कैसे उठाई जाएगी? सवाल पैदा होता है, जैसे माँ के पेट से बच्चे को निकाला था। मुश्किल है हमारे लिए तो, मुश्किल है, लेकिन दिन रात देखते हैं ना, तो जिस तरह माँ का पेट एक कब्र ही है ना छोटी सी, उससे इंसान निकले तो इस बड़ी दुनिया में आ गए। माँ के पेट के बच्चे से पूछो कि दुनिया क्या है, तो कहेगा ये दो चार बालिश की जगह, कुछ खून है, कुछ पस है, कोई पानी है, कुछ अंतड़ियां है, माँ का पेट यही है ना। उसको वहां आप कहते हैं नियाग्रा फॉल कोई चीज है, उसको कहते हैं कि पहाड़ एक चीज है, समंदर है, वो नहीं मानता ना, कहेगा ये कैसे हो सकता है। उसको पूछो मामू एक चीज होता है, चचा एक चीज होता है, एक रिश्ता है, नहीं पता ना। हमें दुनिया में आने से पहले नहीं पता था दुनिया में क्या है, इस तरह इस दुनिया में रहते हुए हमें आखिरत के मनाजिर पता ही नहीं। माँ के पेट की कब्र फटी तो हम इस दुनिया में आ गए, तो जब इस असल कब्र से निकलेंगे हम सब एक नई दुनिया में होंगे, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन कुरान में बहुत आएगी आगे जाके। नतीजा क्या है? क्यामत के दिन यौम यकूम अन्नास लि रब्बिल आलमीन, लोग अपने रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, हम सब खड़े होंगे। तीन सवाल कब्र में पूछे गए, पांच सवाल आखिरत में पूछे जाएंगे उस मैदान महशर में। पहला सवाल, उम्र कहाँ गुजारी, जिंदगी कहाँ गुजारी, वेयर डिड यू स्पेंड योर लाइफ, अन उम्री ही फी मा अफना हो, और दूसरा अन शबाब ही, जवानी कहाँ गुजारी। हालांकि ये उम्र के अंदर आता है ऐसा, लेकिन अक्सर लोग जवानी में गाफिल होते हैं, मस्त होते हैं, क्योंकि जवानी दीवानी और अजीबो गरीब नाच गाने का नाम जवानी रख दिया। तीसरा सवाल होगा क्यामत के दिन, अन मालिन, माल के बारे में, मिन ऐ नक्त सबहू, कहाँ से कमाया अपना माल, ये जो खाना पीना खाते थे, कपड़े पहनते थे, ये कहाँ से आते थे। और चौथा सवाल होगा, मिन ऐना अनफक्हू, कहाँ खर्च किया। और पांचवा और आखिरी सवाल, माजा अमिला बिमा अल्लमा, जो इल्म हासिल किया उस पर अमल कितना किया, जो इल्म था जो मालूम था उस पर अमल कितना किया। हदीस में आता है कि इन पांच सवालों के जवाब दिए बगैर किसी को क्यामत के मैदान से हिलने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहा वल यौमिल आखिर, आखरत का दिन। ये तो है इस्लाम का अकीदा, क्यामत के दिन फिर पलड़े तुलेंगे, जब सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, नेकियां और बदियां, आमाल नामे मुख्तलिफ सूरतों में हमारे सामने होंगे, और नेकियों वाले जन्नत में और बदियों वाले जहन्नुम में चले जाएंगे। ये तो है आखरत का अकीदा। बातिल लोगों ने इस अकीदे में बहुत सारी तब्दीलियां कर दी, और वो क्या कि होगी कियामत, होगा हिसाब, लेकिन फुला आएगा मेरी बख्शीश कर देगा, फुला आएगा सिफारिश करवा देगा। पीछे पड़ चुके हैं ना बनी इसराइल के नाते से, पांच खराबियों में आ गई थी। तो कल ला तजी नफ्सुन नफ्सन शय्ये वला मरुयौम इज़िल्ला, आगे भी हम पढ़ेंगे। तो क़यामत के दिन पर ईमान, ठीक ईमान, ये ईमान नहीं कि हमारी मर्जी का एक दिन आना है क़यामत का और फलां आएगा तो बख्शा लेगा और फलां बचा लेगा और किसी को कुछ, तो वल यौम आखिर बंदा मोमिन का ईमान हो कि मरने के बाद मुझे कब्र से उठाया जाएगा, फिर जन्नत या जहन्नम। बस अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तीसरी मंजिल पे चलिए, नंबर 3 लिखिए, वल मलाइकाती, फरिश्तों पर ईमान लाए। फरिश्ते कौन है? अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं। और अगली बात फरिश्तों के बारे में नोट कर लीजिए कि बंदों के मददगार हैं, नजर नहीं आते इंसान से, नूर से बने हैं। इंसान किससे बना? मट्टी से बना। फरिश्ते नूर से बने, शैतान बना नार से, आग से, फरिश्ते बने नूर से। फरिश्तों के बारे में अगली चीज़ अपने अकीदे में डाल लीजिएगा कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। और ये जुमले जो मैं बोल रही हूँ ना, बड़ी कोशिश करके छोटे, इसको एक लाइन में सिर्फ एक जुमला लिखिएगा, पैराग्राफ की सूरत में ना लिखिएगा, वरना आपको कई पॉइंट मिस हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फरिश्ते जो हैं हर काम के ऊपर मुकर्रर हैं, यानी मुख्तलिफ फरिश्ते मुख्तलिफ काम करते हैं। कोई बारिश बरसाते हैं, तो कोई बच्चे को पैदा करने में मदद देते हैं, तो कोई वही लेके आते हैं, ठीक है। और फरिश्तों का हिसाब किताब नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर नो कहने का मादा नहीं है। ऐसे ही जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दें तो उसको चलना ही चलना है, विल पावर नहीं है फरिश्तों के पास। और फरिश्ते का यहाँ ताल्लुक एक खास जरिए से भी आ गया कि फरिश्ते के जरिए से ही अल्लाह का कलाम बंदों तक पहुँचता है, ठीक है। तो अगली दर्जे पे चलिए, नेक्स्ट स्टेप, वल किताब, और किताब पर ईमान। किताब कौन सी किताब? नबी के ऊपर जो किताब उतरी, नहीं आज तो कुरान है, हजरत इब्राहिम पे जो उतरी थी सहीफे उनकी किताब, तौरात के वक्त में तौरात, जबूर के वक्त में जबूर, ठीक है। तो किताब से मुराद सारी किताब। अगर आप यहाँ देखें ना, किताब से पहले अल लगा हुआ है, अल किताब। ये ऐसी है जैसे इंग्लिश में एक होता है लफ्ज बुक, कोई भी बुक, लेकिन आप कहते हैं ना द बुक, तो द बुक के खास बुक, तो यहाँ क्या है? अल किताब, अल्लाह की तरफ से आई हुई किताब, अपनी लिखी हुई तशरीहात नहीं, इजाफे नहीं, बल्कि इल्हामी किताब, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे चलिए, वन नबीजीन, और नबियों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, नबियों पर ईमान। नबी कौन होते हैं? नंबर 1 लिखिएगा, अकीदे की बात है इसलिए बहुत केयरफुल हूँ मैं। नंबर 1 नबी इंसान होते हैं। नंबर 2 नबी भी मट्टी से बने होते हैं। नबियों के अंदर भी वही दिल जिस्म रूह होती है जो हम इंसानों में होती है, लेकिन नबी खताओं से पाक कर दिए जाते हैं। कुरान पाक में आप पढ़ेंगे कि नबियों से भी खताएं हुई, लेकिन वो नबुवत से पहले थी। जैसे हजरत मूसा से कत्ल तक हो गया खता के साथ, नबुवत से पहले। आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त का फल चख लिया, नबुवत से पहले था। तो पता क्या चला कि बड़े से बड़े गुनाह करके आए हुए लोग भी कभी मायूस ना हो। अल्लाह गुनाहगारों को जब नबुवत दे सकता है, तो हम जैसे गुनाहगारों को कुरान नहीं दे सकता? अल्लाह माफ कर देता है सब कुछ। और नबियों पर ईमान के साथ साथ जहन में रखिए कि नबी रोल मॉडल होते हैं, उसवे हसना होते हैं। उनके ऊपर ईमान लाना हमारे लिए लाजिम होता है, और नबी एक क्राइटेरियन होते हैं, फुरकान, मेयार। मसलन आप देखिए कि ये ग्लास है, हम पानी पीते हैं ना इस ग्लास में, इस ग्लास का टोटल हजम कितना है? मे बी 1 लीटर, सपोज कर ले आप, इस ग्लास में 1 लीटर पानी आता है। बिलफर्ज अगर आप इस ग्लास में 1.25 लीटर पानी डालेंगे तो क्या होगा? 1 पाव लीटर बाहर गिर जाएगा, ठीक है। यही नबी है। दीन कितना है, कहाँ है? नबी की सूरत में आएगा, नीचे से पतला ऊपर से बड़ा। अगर इसमें आप 2-3 और बम डाल दें, कोई झोल डाल दें, तो अगर इसमें पानी डाल के इसको फ्रीजर में रख दें, तो जब आप निकालेंगे ना ठंडा करके, तो ग्लास का ग्लास एक बर्फ का बनेगा। ये है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी एक पूरे का पूरा स्केल्टन होते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारे आमाल को नबियों के सांचे में ढालेंगे, जो अमल इससे बाहर होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक चलता फिरता नमूना रोल मॉडल की सूरत में, क्योंकि किताब तो पढ़ी जाती है, नबियों को पढ़ा नहीं जाता, नबियों को देखा जाता है। और नबियों के साथ मामला इस तरह से होता है कि उनको देखते जाओ और अमल करते जाओ। किसी काम का नेकी होना क्या है कि वो काम नबी ने किया हो। एक होता है अच्छा काम और एक होता है नेक काम, बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। जब मैं आपको इसकी थोड़ी सी अभी डिस्क्रिप्शन मजीद अलग से दूंगी ना, तो उसमें इसको क्लियर करूंगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो काम कयामत के दिन हमारे नबियों के सुन्नत के मुताबिक नहीं होंगे वो काम रिजेक्टेड हो जाएंगे। अभी इतने ही करें, फिर आगे चलते हैं। नबी की बात हो गई, उसके बाद नेक्स्ट थिंग देखिए, व आतल माला अला हुब्बिही, कितना नंबर आया? 6 नंबर। और माल को दे दे उसकी मोहब्बत के बावजूद, एक मानी तो इसका ये है, हुब्बिही की जमीर माल की तरफ करेंगे। तो मतलब क्या कि माल से बंदे को प्यार होता है, सीधी सी बात है। इस प्यार के बावजूद सारा माल खुद नहीं रखना, बल्कि किस किस को दे दो? ज़विल क़ुरबा, रिश्तेदारों को दो, बेटे हो तो माँ को भी हिस्सा दो, बाप को भी दो, बीवी को भी दो, शोहर को भी दो, गरीब भाई बहनों को भी दो। तुम्हारे खानदान में लोग पिस रहे हैं खाना नहीं, और तुम एक एक जोड़े पे हजारों लगा देते हो, तुम एक एक जूते पे हजारों लगा देते हो। तुम्हारे खानदान में कितने भूखे हैं? तुम्हारे एक जोड़े की कीमत में हो सकता है किसी का पूरे 1 महीने का राशन हो जाए। ये मुराद है कि अपनी जात पे लगाते हुए पेटी ना भरे और दूसरे को देने को दिल ना खुले। ये है अला हुब्बिही। फितरी तौर पे इन्नल इंसान अली हुब्बिल खैरी लशदीद, बेशक इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा शदीद है। और अल्लाह कहते हैं ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, इन्नहु अला जालिका लशहीद। बंदे को पता है कि उसको माल से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह ने हमें माल क्यों दिया? कि अपनी ज़रूरियात भी पूरी करें और इसके साथ अपने गरीबों को भी दें, रिश्तेदारों को दें, फिर वल यतामा, यतीमों को भी दो, पिसे हुए लोग जिनका कोई बुरसाने हाल नहीं, जो माशरे से कट जाते हैं और जिनके पास गुर्बत की वजह से चीज़ें देर से मिलती हैं, जिनको चीज़ें नहीं मिलती और इनसे वापसी में कुछ मिलने की उम्मीद भी नहीं होती। इंसान अपने ही जैसे रिश्तेदारों को कुछ देता है ना, तो कहता कोई नहीं, आज देंगे कल मिल जाएगा, आज एक हाथ से देंगे बल्कि कल को बढ़ता वही देगा। हाँ, इन मिस्कीनों ने तो कुछ नहीं देना, यतीमों ने नहीं देना। यह है इस्लाम का असल रूप, कि इस्लाम उन लोगों पे खर्च करने की दावत दे रहा है कि जिनसे वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, और नेकी होती वो है कि जिसके रिटर्न में बंदा बंदों से कुछ नहीं मांग रहा होता। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ है कि वल मसाकीन, और मिस्कीनों को दे। मिस्कीन कौन होता है? हैंड टू माउथ, सकना, रुक जाना, मस्कन घर को कहते हैं ना। तो मिस्कीन वो होता है जिसको लगता है गुर्बत की वजह से महीना ही रुक गया है। कभी आपने कुछ सफेद पोश लोगों को देखा होगा महीने के आखिरी दिनों में, फिर वो देख रहे होते हैं हाथों की तरफ, डेट देखते हैं कब महीना खत्म, अच्छा कब तनख्वाह आएगी। हमें तो कभी इन चीज़ों में अल्लाह ने डाला ही नहीं ना कि किसी के घर में कोई इस तरह, हमारे तो हर वक्त ही आता है और हर वक्त ही जाता है। कभी सच बताएं, खाना पकाते हुए आप हमने सोचा कि महीने के शुरू की तारीखें हैं तो गोश्त ले आए और आखिरी तारीखें हैं तो दाल ही बना लें? कभी सोचा मैंने और आपने? और मैं आपको पूरे शऊर और शरह सदर से कह सकती हूँ, हम सब के रिश्तेदारों में कई ऐसे लोग होंगे कि आखिरी हफ्ता महीने का फिर वो बस बच कुछ कर रहे होते हैं। ये लोग हैं मस्कीन, जो अपनी गुर्बत छुपाए। कोई मेहमान चला दे अपनी इज्जत रखने के लिए, उसको जो महीने की चीज़ें जमा करके रखी थी खिला दे, और शो ये करे कि नहीं बहुत है खा लेंगे, और बाद में घर वालों से कि कोई बात नहीं, 4 दिन भी दाल पका लेंगे तो क्या है, 3 दिन तो आगे ही पकती थी हफ्ते में। ये है मिस्कीन। इस्लाम कहता है कैसे बिसे हुए लोगों को ढूंढो और इनको दो। और याद रखिए कि ये जुर्म अजीम है कि किसी सोसाइटी में कुछ लोग तो अपने खाने के बाद जाया करें और कुछ लोग बेचारे गुर्बत की वजह से जाने दे रहे हो। ये आज इस्लाम नहीं है जो हमें इर्द गिर्द दिखता है। बहरहाल आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप, वबन सबील। अगर इसका मैं लफ्जी तर्जमा करूँ ना, तो इबन कहते हैं बेटे को, अभी आपने वजाहत में भी सुना, और सबील कहते हैं रास्ते को, रास्तों का बेटा। क्या मतलब है? जो बहुत ज्यादा सफर करे, ट्रेवलर, अरबों में कल्चर था कि जब कोई काम बहुत ज्यादा करता था ना तो उसको उसका बेटा कह देते थे, जैसे इब्ने दुनिया, हाँ दुनिया का बेटा, बहुत दुनिया से प्यार करने वाले को लोग कहते हैं। तो यहाँ मुराद है मुसाफिर। अब मुसाफिर में आप देखिए क्या क्या होता है, घर में करोड़पति भी हो सकता है बंदा, लेकिन सफर में जेब कट गई। आज तो मेरे पास मौजूद है ना 10-10 कार्ड होते हैं जेब में, और टेलीफोन हर पे जा रहे हैं, और एटीएम मशीनों के नंबर याद है। ये उस दौर की बातें हैं कि जब लोग सहराओं में रास्ते भटकते थे तो मर जाते थे भूख की वजह से। तो कहा ऐसा मुसाफिर जिसके पास कुछ है ही नहीं, या था और अब है नहीं, इवन उसको ज़कात भी दे दो, वो बाद में जाके तुम्हें चीजें पैसे वापस भी कर सकता है अपने ठिकाने पे पहुंच के, लेकिन आज वो मुसाफिर है। और आपको पता है कि सफर में हमेशा चीज कम हो जाती है। आप गिन गिन के लेके जाते हैं ना, जोड़े भी, कपड़े भी, जूते भी, फिर आप पैसे भी कहते हैं इतने होंगे, कोई इमरजेंसी पड़ गई, हो सकता है वो 15 दिन का खर्चा 1 हफ्ते में पूरा हो गया। तो हैंड टू माउथ होता है। कभी हज पे गए हैं और जहाँ लिमिटेड मनी लेके जाने की इजाजत हो तो आप फील करेंगे कि एंड पे बंदा परेशान होता है, बिल्कुल कहा कि उनको दो तुम। उसके बाद अगली कैटेगरी देखिएगा, बस साइलीन और सवाली। ये कौन लोग हैं जो सवाल कर लेते हैं? साइल से मुराद वो शख्स जो मदद के लिए हाथ फैलाए, बस मजबूर होते हैं फिर हाथ फैलाते हैं। कुछ आधी साइल भी होते हैं जो मजबूरियों में सवाल करे उसको तो फौरन दो, और जो आदतन जिसको बैगर्स कहेंगे आप, बैगिंग करें, उसको समझाओ, नरमी से बात करो कि मेहनत मजदूरी से कमाओ। अल्लाह के नबी के पास एक दफा एक शख्स ने सवाल किया, आपने उसको कुछ दिया, फिर अगली दफा फिर उसने सवाल किया तो आपने उसको कुछ नहीं दिया बल्कि कुल्हाड़ी खरीद के दी, कहा कि इसको कुल्हाड़ी दो, फिर कहा आओ मेरे साथ, फिर जंगल में ले गए, फिर जंगल में जाके उसको कहा कि आओ लकड़ियाँ काटो, फिर जब लकड़ियाँ काटी कहा चलो इस गट्ठड़ को लेके बाजार में चलो, वहाँ गए जाके कहा उसको बेचो, तो कुछ पैसे मिल गए ना, तो आपने उसको हुनर सिखा दिया। तो सवालियों को खराब करने के बजाय उनके कोई रोजगार का इंतजाम कर दो। फिर अगली कैटेगरी देखिएगा, वह फिर रकाब और गर्दनें आजाद कराने में। रकाब गर्दन को कहते हैं, रकाबा गर्दन आजाद करना, उनको कहते हैं गर्दन को, यानी जो नेक होती है हमारी, वो नेक है, ये रकबा फर्क है। जैसे कहते हैं ना कि किसी की गर्दन पे हाथ डाल लेना क्या होता है, उसको अपने कब्जे में कर लेना, तो ये गुलामों की तरफ इशारा है। जब इस्लाम आया था दुनिया में नबी सल्लम के दौर पे, जब उसकी कैफियत थी, पूरी दुनिया गुलामों से भरी हुई थी। ये तो आज अगर दुनिया में स्लेवरी नहीं है अपेरेंटली, तो ये इस्लाम का एहसान है। इस्लाम में इतने खूबसूरत तरीके से गुलामी को खत्म किया गया, जैसे शराब खत्म कर दी मुसलमानों में, इस तरह गुलामी खत्म कर दी, आजाद करवाओ, इतनी रग़बत दिलाई गई कि इनके एक एक उसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नुम से आजाद कराएगा, तो कहा कि फिर गुलामों को आजाद कराओ। अब आज तो गुलाम नहीं मिलते, तो फिर आज कहाँ लगाए, जेलों में वो कैदी जो बेगुनाह है मारे गए, किसी और के जुर्म की सजा में है, कुछ सियासी कैदी हैं, इस तरह के वो लोग हैं, उनको आजाद कराओ।